आज है 12 जनवरी दिन मंगलवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। पठानकोट हमले के कई दिनों बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया कड़क बयान।
जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होगा।
अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति का रास्ता तलाशने के मकसद से पाकिस्तान में हुई बैठक।
The primary objective of reconciliation process is to create conditions to bring the Taliban group.
हिंसा प्रभावित कालीयाचक में जाने की नहीं मिली बीजेपी के नेताओं को अनुमति। और पर्थ में आज से खेले जाने वाले 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि कोई व्यक्ति या संगठन भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो बदले में उसे भी दर्द सहना पड़ेगा। भारतीय सेना के 68वें सैन्य दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि आपको कोई चोट पहुंचाता है तो उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब पठानकोट पर चरमपंथी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इराक में चरमपंथी हमले की 4 अलग अलग घटनाओं में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बगदाद में एक शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने कबूल की है। इस्लामिक स्टेट के सुन्नी चरमपंथी शिया बहुल बगदाद में पहले भी हमले करते रहे हैं। शॉपिंग सेंटर पर हमले के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए बंदूकधारी अचानक आए और गोलियां चलाने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों में छिपने लगे, लेकिन चरमपंथियों ने उनका पीछा किया और बेरहमी से गोलियां चलाईं। एक आत्मघाती हमलावर ने भी कार में धमाका किया। बगदाद में एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मदद पहुंचाने वाले दल सीरिया के मडाया कस्बे पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि भुखमरी की कगार पर खड़े मडाया के कुपोषित बच्चों की कुछ दिन पहले जो तस्वीरें सामने आई थीं, वो एकदम सही हैं। सीरिया के इस हिस्से में सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में धांधली के अभियुक्त 3 सांसदों को जब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक नेशनल असेंबली की किसी भी कार्रवाई को वैध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वेनेजुएला की संसद में राष्ट्रपति निकोलस मेडुरो की समाजवादी सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच पहले से जारी टकराव और बढ़ सकता है। जर्मनी के पूर्वी शहर लैप्टिक में मुसलमान विरोधी हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है। प्रदर्शनकारी जर्मनी में महिलाओं पर यौन हमलों के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। प्रदर्शनकारी जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से नाराज हैं। उनका कहना है कि जर्मन चांसलर प्रवासियों को पनाह देकर उनकी मातृभूमि को नष्ट कर रही हैं। एक नए विश्लेषण से पता चला है कि नेपाल में बीते साल जैसा विनाशकारी भूकंप भविष्य में दोबारा आ सकता है। वैज्ञानिकों ने नेपाल में आए भूकंप से जुड़े सैटेलाइट डेटा का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है। नेपाल में बीते साल अप्रैल में 7.8 तीव्रता की भूकंप की वजह से 8,000 से अधिक लोग मारे गए थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के दक्षिणी हिस्से में भूगर्भीय परतों में ज्यादा हलचल हो रही है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। पठानकोट हमले के कई दिनों बाद कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़क शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने भारत को दर्द दिया है, उन लोगों को भी दर्द झेलना होगा। रक्षा मंत्री ने 68वें सेना दिवस के मौके पर सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इस मामले को काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में ही पंजाब के पठानकोट में चरमपंथी हमला हुआ था और इस हमले में 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
पठानकोट हमले के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी सरकार अब तक इस मामले में कड़े बयान देने से बचती आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान दौरे के बाद बने माहौल को बचाए रखने की कोशिश में बीजेपी और सहयोगी दलों ने संयम बनाए रखा, लेकिन सोमवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आखिरकार सख्त लहजा दिखा ही दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा,
बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुँचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं हुए।
रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर किसी देश या संगठन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके संकेतों की सुई किस ओर जाती है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की ओर से पठानकोट हमले से मिले सबूतों की छानबीन और उन पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही जा रही हो। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने रक्षा मंत्री के बयानों में छिपे संकेतों को पढ़ लिया है और इसे बीजेपी की तरफ से एक और जुमला करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद,
जाहिर है देखिए ये लोग जुमलेबाजी के लिए मशहूर हैं और इनकी जुमलेबाजियां सुन सुन के मुल्क भी अब परेशान हो रहा है। सुषमा स्वराज जी कहती थी कि सर काट के पाकिस्तानियों के लाओ और उनके प्राइम मिनिस्टर केक काटने पाकिस्तान चले गए। और ये गुरदासपुर में जो टेरर अटैक हुआ, ये पठानकोट के अटैक के पहले जो एयरबेस पे हमारे अटैक हुआ, इसके 6 महीने के अंदर अंदर ये दूसरा अटैक। पहले अटैक के बाद तो सुषमा स्वराज जी चली गई, हमारे NSA मिल लिए, प्रधानमंत्री जी ने बैंकॉक में मुलाकात कर ली थे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री उनके यहाँ बर्थडे केक काटने चले गए और शादी में शामिल होने चले गए। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? फिर अगर कुछ बात होगी तो कहेंगे कि वो एक जुमला था।
सोमवार पूरे दिन इस बात पर अटकलों का बाजार गर्म रहा कि पाकिस्तान ने कथित रूप से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हमले के बाद इतना जरूर है कि अब तक दोनों तरफ से किसी तरह की तल्खी नहीं दिखाई गई है और कम से कम लहजा सकारात्मक बना हुआ है। अमेरिका ने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने भी नतीजों पर पहुंचने की जल्दीबाजी नहीं दिखाई है। बीजेपी रक्षा मंत्री के बयान को इस वक्त की जरूरत बता रही है बीजेपी नेता तरुण विजय।
हमारे रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब का जो बयान आया है कि मातृभूमि के जो सैनिक हैं उनकी सेवा और उनके साहस पर हमें गर्व है, लेकिन हम चाहते हैं कि वे दुश्मनों को मारें और स्वयं जीवित रहें। यह बिल्कुल सही बयान है और अब समय आ गया है कि जो सीमा पार से आए दुश्मन हैं उनका सफाया किया जाए। ये सांप है, चोर उचक्के और ठगों की तरह से रात के अंधेरे में हम पर हमला करते हैं।
बीजेपी की दलील अपनी जगह है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस वक्त बयान की बजाय शायद उन कमियों को ढूंढने की जरूरत है जिनकी वजह से हमलावर देश की सीमा में इतने संवेदनशील हिस्से तक पहुंच सके। आखिर रक्षा मंत्री ने भी तो पहले माना था कि कहीं चूक हुई है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट हमले के करीब 10 दिन बाद दिया कड़क बयान, ये थी वात्सल्य राय की रिपोर्ट। इधर भारत का विदेश मंत्रालय ये कह चुका है कि उसने पठानकोट हमले से जुड़े सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। उधर दिन भर कल ऐसी खबरें आती रहीं कि पाकिस्तान में कई इलाकों में छापे मारे गए हैं और इस मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। भारत में इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने इस्लामाबाद में BBC उर्दू सेवा के सहयोगी शहजाद मलिक से पूछा कि क्या इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है।
जी देखिए, जहाँ तक मुख्तलिफ इलाकों में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऑफिशियल्स का रेड करने का ताल्लुक है तो ये एक रूटीन की बात है। इसमें अगर आप इसको पठानकोट के वाक्य के साथ एट्रीब्यूट करें तो फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, ये प्रीमेच्योर है इस बारे में कुछ भी बात करना, क्योंकि सिर्फ यही वाक्य नहीं बल्कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये भी कुछ मालूमात है कि कुछ यहाँ पर जो अफराद हैं उनका ताल्लुक वो जो दाइश है या खुद को जो दौलत इस्लामिया कहलाने वाली तंजीम है उससे हो सकता है। तो इस हवाले से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो काफी एक्टिव हैं, वो जरूर रेड कर रही हैं और मुख्तलिफ लोगों को छापे मार रही हैं, घरों पर छापे मार रही हैं, लेकिन ये कहना है कि ये पठानकोट के वाक्य से मुतल्लिक है अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आ रही।
ये जो कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई गई है जो इस मामले में सबूतों की छानबीन करेगी, उसके बारे में क्या जानकारी है?
कमेटी वगैरह का तो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अनऑफिशियली जाहिर है कि कमेटी तो काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर की जो इंस्ट्रक्शन थी उस बारे में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऑफिशियल्स हैं और FIA की टीम है, पुलिस की टीम भी ऑफिशियल्स उसमें हैं, तो अपने तौर पर इसको प्रोब तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सही सूरत-ए-हाल बिल्कुल वाज़ह नहीं है। यहाँ पर तो कुछ ये भी खबरें चली हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडियन अथॉरिटीज ने जो इंफॉर्मेशन दी थी, जो सबूत दिए थे पठानकोट के वाक़े से मुतल्लिक, उस बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो कम्प्लीट कर ली है और इंडियन अथॉरिटीज के हवाले कर दी गई है, लेकिन ऑफिशियली इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा रहा और ना ही इस बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अथॉरिटीज इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से जो सबूत पाकिस्तानी अथॉरिटीज को दिए गए थे, क्या वो इतने सब्सटेंस उसमें है कि उससे कोई कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे चल सकेगी या नहीं, इस बारे में अभी तक इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल खामोश हैं।
बातचीत को लेकर के वहाँ पर किस तरह से तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है कि ये बातचीत मुकम्मल हो पाएगी?
काफी इस पे बातचीत भी होती रही शुरू में, जब कल जो खबर आई थी कि इंडियन न्यूज़पेपर्स में कि जो पाकिस्तान और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरीज के दरमियान जो डायलॉग होने हैं 15 जनवरी को, वो उनको कॉल ऑफ कर दिया गया है, लेकिन उसके फौरी बाद ही इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से इसकी निगेशन भी आ गई। तो जब तक ये निगेशन नहीं आई थी तो पाकिस्तान में भी इस बारे में काफी कंसर्न पाया जा रहा था कि हो सकता है कि ये मुजाकरात डायलॉग जो है वो ना हो, लेकिन जब इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से ये क्लियरेंस आ गई तो उसके बाद जो पाकिस्तान यहाँ पर जो स्पेकुलेशन इन डायलॉग्स के हवाले से चल रही थी वो तकरीबन खत्म हो गई है।
ये थे इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक। पठानकोट में हुए हमले के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि इस हमले में पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद की भी हमले में भूमिका हो सकती है। हालांकि इससे पहले इसकी जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली थी। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने सुरक्षा मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण स्वामी से पूछा कि क्या यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और जैश ए मोहम्मद के बीच कोई संबंध है।
यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के साथ जैश ए मोहम्मद ने बहुत करीबी तौर से कई सालों से काम किया है। दोनों संस्थाएं जिहाद कश्मीर में शामिल रही हैं, उनके काडर्स ने साथ काम किया है, साथ लाइन ऑफ कंट्रोल इन्फिल्ट्रेट किया है, लेकिन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल मानती है कि वो एक कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन ना कि पाकिस्तानी, और इसलिए जैश ए मोहम्मद उससे फॉर्मली जुड़ी नहीं है। जहां तक जैश ए मोहम्मद की बात है, उनके मैगजीन पे एक स्टेटमेंट आया है जिसपे उन्होंने अटैकर्स की तारीफ की है, ये कहा है कि पठानकोट में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पहले भी उन्होंने कोई हमला माना नहीं है कि उन्होंने किया है। पार्लियामेंट का हमला 2001 का जो था उस वक्त भी कोई उनने जिम्मेदारी नहीं ली थी अटैक की, तो उनके कुछ ना कहने पे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए।
भारत में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें इस तरह की बात आ रही है कि यहाँ उनके कुछ मददगार हो सकते हैं, और वैसे तो जो सलविंदर सिंह है उनके पर भी शक की सुई घूम रही है और वो जांच के दायरे में है, लेकिन इस शक की और क्या मतलब बुनियाद है कि इस तरह की बात कही जा रही है?
देखिए, जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि हमलावरों के भारत के अंदर मददगार हो सकते थे, उसके अभी तक कोई सबूत नहीं है, ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना और किसी संस्था के पास ऐसे कोई सबूत है जिससे ये दिखता है कि कोई खास मददगार हुआ होगा। आखिर ऐसे बहुत सारे फिदायीन हमले हुए हैं पहले भी जिनमें कोई मददगार नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से अटैक हुआ है उससे लगता है कि कम से कम हमलावर उन्होंने एयरबेस के बाउंड्री वॉल की कमियों की जानकारी, उन्होंने एक ऐसी जगह हमले करने के लिए देखी जहां काफी सफेदा के पेड़ उग रहे थे, जहां थोड़ा जंगली सा एरिया था और जहां फ्लडलाइट काम नहीं कर रही थी। तो ये संभव है कि किसी ने कम से कम उनके लिए रिकॉग्नाइजेंस किया, पहले इलाका देखा।
ये जो कहा जा रहा है कि हमला करने से पहले वो भारत की सीमा में 20 घंटे पहले दाखिल हो चुके थे, तो उन 20 घंटों में वो कहाँ थे, और इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सवालों का कोई आधार देखते हैं हम?
देखिए, उनके जो कॉल टावर डेटा है, मतलब उनके फोन कॉल जो किए गए थे अपने पाकिस्तान में कमांडरों को और एक शायद दहशतगर्द के माँ को, उससे ये स्थापित हुआ है कि कम से कम 20-21 घंटे वो पठानकोट के बेस के इर्द गिर्द थे। एक टावर का जो एरिया है 2-2.5 कभी कभी ज्यादा 5 किलोमीटर तक का भी रेडियस रहता है, तो उस इलाके के अंदर थे, जबकि ये कहा नहीं जा सकता कि बेस के अंदर छुप गए थे कि उसके बाहर कहीं घूम रहे थे। इसे ये लगता है कि उनकी काफी हद तक तैयारी थी। हुआ ये हुआ, हो सकता है कि उनने किसी जगह में आड़ ले ली सुबह सुबह और फिर रात के लिए वेट किया फेंस को टाप जाने और रात की इंतजार थी उनको। लेकिन इस पे कॉन्फिडेंटली कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली जो हमलावर थे उनमें से कोई जिंदा नहीं है और सेलफोन डेटा सिर्फ इलाके का बता सकता है, एग्जैक्ट जगह का नहीं बता सकता। लेकिन ये तो हकीकत है कि 20-21 घंटे वहां थे, यानी इंटेलिजेंस की वार्निंग मिलने के बाद काफी घंटे वो बेस के इर्द गिर्द में थे। और इससे ये सवाल उठता है कि जब हमें पता था कि ये बेस के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं तो ज्यादा फौज उनको खोजने के लिए लगाई क्यों नहीं गई।
तो पठानकोट हमले ने उठाए हैं कई सवाल। ये थे वरिष्ठ पत्रकार और सुरक्षा मामलों के जानकार प्रवीण स्वामी और उनसे बात कर रहे थे निखिल रंजन। तो रक्षा मंत्री ने कल बयान दिया, पाकिस्तान में कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अखबारों ने क्या लिखा है इस खबर पर बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है संदीप सोनी। संदीप,
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान के इर्द गिर्द हर अखबार ने अपनी सुर्खी लगाई है, बड़ी खबर बनाकर छापा है। हिंदुस्तान ने इस खबर पर सुर्खी लगाई है कि बदले का वक्त और जगह हम तय करेंगे। जनसत्ता ने लिखा है, भुगतेगा भारत को दर्द देने वाला। नवभारत टाइम्स देखें तो यहाँ पर लिखा है, दर्द के बदले दर्द चाहते हैं रक्षा मंत्री। इंडियन एक्सप्रेस में भी इसी से मिलते जुलते शब्द हैं। द हिंदू ने रक्षा मंत्री के इस बयान को पठानकोट हमले का नतीजा बताया है। आपको ध्यान होगा कुछ ही दिन पहले की बात है, भारत ने कहा था कि हमने पठानकोट हमले के सबूत पाकिस्तान को दे दिए हैं। इस पर दैनिक जागरण ने लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत के सबूतों को नकार दिया है। अमर उजाला लिखता है कि भारत से मिली सूचना के बाद पाकिस्तान में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। इस खबर के अलावा अन्य खबरों का जिक्र करें तो ममता बनर्जी ने भाजपा टीम को मालदा से बैरंग लौटाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है। संसद परिभाषा तय कर सकती है बच्चे की, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार दुष्कर्म के मामलों में कठोर कानून बना सकती है, यह खबर है दैनिक भास्कर और कुछ अन्य अखबारों में भी। इसी खबर पर अमर उजाला लिखता है कि केंद्र सरकार बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों में कठोर सजा पर विचार करे। इसके अलावा दिल्ली में सम विषम फॉर्मूला जारी रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताकर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये खबर भी लगभग लगभग हर अखबार में है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह से। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति के लिए रास्ता तलाशने के इरादे से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के मुख्य अधिकारियों ने इस्लामाबाद में बैठक की। अफगानिस्तान की सरकार बीते एक दशक से भी अधिक समय से तालिबान के चरमपंथियों से संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में शामिल देशों के अधिकारियों का मानना है कि बातचीत के जरिए अफगान तालिबान से समझौते का रास्ता निकालेगा। एक रिपोर्ट के साथ संदीप सोनी।
अफगानिस्तान में अमन कायम करने के उपायों पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक की शुरुआत में ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि तालिबान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिनसे आपसी भरोसा बढ़े।
Today's meeting of the quadrilateral group is of great significance.
सरताज अजीज कह रहे थे कि बैठक का बड़ा महत्व है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मेलजोल के लिए दिशा तय करने की है। इसके लिए लक्ष्य तय करने होंगे, अफगान सरकार और तालिबान गुटों के बीच सीधी बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है।
The primary objective of reconciliation process is to create conditions to bring the Taliban group to the negotiating table.
सरताज अजीज कह रहे थे कि मेलजोल की प्रक्रिया का पहला लक्ष्य तालिबान को बातचीत के लिए प्रेरित करना है, उन्हें हिंसा छोड़ने के लिए राजी कराना है। इसके लिए जरूरी है कि बातचीत के लिए पहले से कोई शर्त न रखी जाए। अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस्लामाबाद में हुई इस बैठक में तालिबान का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। इसकी वजह यह है कि शांति वार्ता करने न करने के मुद्दे पर तालिबान के अलग अलग गुटों में मतभेद है। अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता बीते साल उस समय टूट गई थी जब ये खबर आई कि तालिबान नेता मुल्ला उमर की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। मुल्ला उमर के बाद दूसरे नंबर के नेता मुल्ला मंसूर को तालिबान का नया नेता घोषित किया गया, लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर तालिबान के भीतर मतभेद सामने आए। तालिबान प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में हुई इस बैठक से कोई नतीजा भले ही नहीं निकला, लेकिन जानकार इसमें एक महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बातचीत में अमरीका और चीन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से अफगानिस्तान के मन में पाकिस्तान के प्रति शंका थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के संबंध देखते हुए अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता की राह अभी भी जटिल है।
अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश, ये थे संदीप सोनी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब वापस लौटते हैं भारत। पश्चिम बंगाल के मालदा को लेकर सियासत अब भी गर्म है। बीते रविवार को मालदा के कालियाचक में हिंसा हुई थी। कल बीजेपी और सीपीएम नेताओं को वहां जाने से रोका गया। इन नेताओं का कहना है कि वो सच जानने के लिए वहां जा रहे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ये नेता वहां लोगों को भड़काने जा रहे थे। अब बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 5 सवाल पूछे हैं। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं निखिल रंजन।
पश्चिम बंगाल में मालदा की घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में मचा बवाल अब भी कायम है। राज्य में विधानसभा के चुनाव पास आ रहे हैं और कोई भी पार्टी इस घटना का इस्तेमाल करने से अपने को रोक नहीं पा रही है। सोमवार की सुबह बीजेपी की तरफ से भेजी गई 3 सांसदों की एक टीम को इलाके में जाने से पहले ही रोक दिया गया था। शाम को सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम भी जब कालियाचक की ओर चले तो उन्हें भी पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। मोहम्मद सलीम ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं।
बीजेपी और तृणमूल दोनों में WWF का कुश्ती करके बंगाल के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि कालियागंज जो इलाका है वहाँ पे जो है किस तरह से पिछले 4 साल 4.5 साल में इलीगल कामकाज बढ़े हैं, जो इलीगल अफीम का जो खेती होता है या स्मॉल आर्म्स के जो स्मगलिंग्स होते हैं या जो बम के कारखाने हुए हैं, और जो लोग स्मगलर्स हैं तो वो लोकल सपोर्ट के लिए धार्मिक भावनाओं को जगा करके कुछ लोगों को इकट्ठा किए। जो लोग इकट्ठा हुए वो जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई थी कमलेश तिवारी की जो बयान थी उसके नाम पर लीफलेट छापा गया, तो पुलिस को चाहिए था पहले से ही कुछ प्रिकॉशनरी लेना। पुलिस वो काम किए नहीं और उसी भीड़ से एक हिस्सा निकल करके योजनाबद्ध तरीके से और एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग पार्टी के कनाइवेंस से वो थाने में जाकर के ये इलीगल एक्टिविटीज के जितने पुराने रिकॉर्ड्स थे उसको निकाले मालखाने से और जला दिए, और आज सांप्रदायिक तथ्य ये प्रचार कर रहे हैं कि ये दंगा हो।
इससे पहले बीजेपी सांसद SS अहलूवालिया, भूपेंद्र यादव और रामविलास वेदांती को मालदा स्टेशन पर उतरने के साथ ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्टेशन पर बने VIP लाउंज में 3 घंटे रखने के बाद इन्हें वापस रवाना कर दिया गया। राज्य में सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि ये नेता प्रभावित इलाके में जाकर लोगों को भड़काना चाहते थे, इसलिए इन्हें रोका गया। इन नेताओं को पार्टी प्रमुख अमित शाह ने सच्चाई जानने के लिए भेजा था। पार्टी के नेता अब गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह,
लोग गृह मंत्री जी से समय लेके तुरंत मिलने वाले हैं और उनसे मांग करने वाले हैं कि जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो उससे जांच तुरंत शुरू करनी चाहिए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिमंडल भारत के राष्ट्रपति जी से भी तुरंत मिलेगा।
बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस घटना के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी महीने की 3 तारीख को कुछ लोगों ने कालियाचक थाने पर हमला किया, BSF की एक जीप में तोड़फोड़ की और कुछ कारों को जला दिया। ये जिला बांग्लादेश की सीमा से लगता है और यहाँ की 30% से ज्यादा आबादी मुसलमान है। राज्य में अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जान लेते हैं संदीप सोनी से।
भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सांड को काबू में करने के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर 4 साल से जारी प्रतिबंध हटाने की मोदी सरकार की अधिसूचना के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। भारत के सभी स्कूलों में योग की अनिवार्यता और योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करने वाली एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज आगे की सुनवाई करेगा। इस याचिका पर बीते साल दिसंबर में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को योग करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर चरमपंथी हमले से पहले कथित रूप से अगवा किए गए गुरदासपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA दिल्ली में आज दूसरे दिन भी पूछताछ करेगी। कल उनसे पूछताछ अधूरी रही थी। पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अपना कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। बीते साल अक्टूबर में गुलाम अली के मुंबई में प्रस्तावित कार्यक्रम का शिवसेना ने विरोध किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें कोलकाता आमंत्रित किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम घरेलू पिच पर सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आज से शुरू हो रहा है। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय युवा महोत्सव आरंभ हो रहा है।
तो संदीप सोनी बता रहे थे आज जिन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पर्थ में 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव से दोनों टीमों की ताकत की तुलना की।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस उनके अपने पिचेस पे होने हैं और वाका और गाबा दोनों ही ऐसे ग्राउंड हैं जहां तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, और यही बात ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने भी कही है। और उन्होंने एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है ये कहते हुए कि हमारे जो तेज गेंदबाज हैं, खासकर युवा गेंदबाज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में अनुभवी गेंदबाजों की कमी है, उनका कहना यह है कि इन कंडीशंस का और इन पिचों का पूरा फायदा उठाएंगे बोलेंड और पेरिस तरीके जो नए गेंदबाज आए हैं तेज गेंदबाज को। मगर ये मत भूलिए कि जब भारत के मध्यम तेज गति के गेंदबाज भी जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ की पिचों पर उनका प्रदर्शन काबिल तारीफ रहता है, चाहे वो ईशांत शर्मा हो, चाहे वो उमेश यादव हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो। भारत के बाहर जहाँ पर पिचें उनके अनुकूल मिलती हैं वहाँ इनका प्रदर्शन अच्छा होता है। तो एक तरह से देखा जाए, हालांकि मोहम्मद शमी की कमी भारतीय टीम में खलेगी और मोहित भी घायल होने के कारण नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो ये तीन खिलाड़ी हमारे हैं तीनों से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में वहां के पिचों पर। एक बात और जो कही जाती है वो ये कि होम एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया की टीम को होना चाहिए। देखिए, होम एडवांटेज थोड़ा तो जरूर होता है, मगर ये है कि भारत की टीम भी ऑस्ट्रेलिया के कई दौरों पर बहुत अच्छा उसने प्रदर्शन किया है, खासकर जब वो सौरभ गांगुली के नेतृत्व में खेल रही थी या MS धोनी के नेतृत्व में भी खेलते वक्त अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मुकाबले एक तरफा होंगे, मगर हाँ, कांटे की टक्कर की पूरी संभावना है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भारतीय बल्लेबाजी को देखें तो भारत के कुछ बल्लेबाज जो शानदार बल्लेबाजी करते हैं वो तेज पिचों पर अच्छे रन बनाते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे वो शिखर धवन हो, इन लोगों को तेज पिचों का पूरा फायदा मिलता है।
मलय जी, लेकिन जिस तरह से पिछले साल भारत बांग्लादेश से एक दिवसीय सीरीज हारा, दक्षिण अफ्रीका से हारा और पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत एक भी मैच नहीं जीत सका था, तो क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक दबाव अब भारतीय टीम पर रहेगा?
ऐसा अक्सर कहा जाता है कि चूंकि पिछला साल खराब रहा इसलिए अगला साल अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। भारत के लिए 2015 दुर्भाग्यपूर्ण रहा शॉर्टर फॉर्मेट में, एक दिवसीय मैचों में 2020 में भारत की टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ 2016 में भी भारतीय टीम अच्छा नहीं करेगी। एक बड़ा सवाल ये है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी क्या अब उसी अंदाज में अब भी देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, जिस अंदाज में देखने के आदी हो चुके हैं भारत के क्रिकेट प्रशंसक और क्रिकेट को चाहने वाले।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि कोई व्यक्ति या संगठन भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो बदले में उसे भी दर्द सहना पड़ेगा। इराक में चरमपंथी हमले की 4 अलग अलग घटनाओं में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। वेनेजुएला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में धांधली के अभियुक्त 3 सांसदों को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक नेशनल असेंबली की किसी भी कार्रवाई को वैध नहीं माना जाएगा। एक नए विश्लेषण से पता चला है कि नेपाल में बीते साल जैसा विनाशकारी भूकंप भविष्य में दोबारा आ सकता है। वैज्ञानिकों ने नेपाल में आए भूकंप से जुड़े सैटेलाइट डेटा का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है। जर्मनी के पूर्वी शहर लैप्टिक में मुसलमान विरोधी हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है। प्रदर्शनकारी जर्मनी में महिलाओं पर यौन हमलों के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।